तक पर सदा हमारे वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे प्रभु किरणों की कृपा छाओ में जीवन हो बाबा
ओम शांति। हमारे बीच बाबा के राइट हैंड कहें, विशेष रतन कहो, पहुंच गए हैं। लेकिन मैं उनका परिचय दूं उससे पूर्व, तो बात चल रही थी हमारे बीच, हमारी आदरणीय उषा दीदी जी पहुंच गए हैं। उषा दीदी को कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं। अच्छा, जो नहीं जानते हाथ खड़ा करो। तो मैं सोच रही थी उषा दीदी की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में, तो मैंने सोचा भगवान को कहा जाता है गीता ज्ञानदाता, कहा जाता है ना, आप चित्रों में भी देखोगे ना, नीचे लिखा हुआ है गीता ज्ञानदाता, परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञानदाता, उनकी आप संतान गीता ज्ञानदात्री। बाबा कहते थे कि कोई ऐसे रतन निकले जो इस विषय को स्पष्ट कर दें सबके आगे, सबकी आंखें खोल दें, भगवान कौन है, किसने ये गीता का ज्ञान दिया। तो आप सरल शब्दों में गीता का ज्ञान सबको देती हैं। दूसरी बात, रामायण जैसे भारत के एक शास्त्र को भी आप सिद्ध करती हैं। और बाबा हमें कहते ज्ञान के अनुसार बच्चे कर्मों की गहन गति है, इसको समझो। अगर ये नहीं समझा तो भाग्य को लकीर लगा लेंगे, क्योंकि कर्म ही तो हमारे सुकर्म चाहिए, पुण्य कर्म चाहिए। तो कौन से कर्म विकर्म बनते, कौन से कर्म सुकर्म बनते हैं, ऐसे ऐसे विषय जो कठिन है उस पर आपकी मास्टरी है। तो इसलिए हमारी उषा दीदी जी ऐसे तो 40 वर्षों से ज्ञान में समर्पित हैं। आपने नैरोबी से ज्ञान लिया, ऐसे वर्तमान समय जो हमारा पॉलिटिकल विंग है उसकी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है, और आज हमारे बीच है। हमारा विषय है, कौन सा विषय है, सवेरे सुनाया था, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक बल, जिस पर आप हमें दिशा निर्देश देंगे। ऐसे तो भट्टी का प्रारंभ कल शाम से हुआ है, जिसमें स्वागत भी हुआ, लक्ष्य भी दिया गया, लेकिन भट्टी की प्रमुख मुख्य क्लासों में आज आपकी पहली क्लास से शुरुआत है उषा दीदी के साथ साथ। तो आपका, दीदी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत।
ओम शांति। बाबा का ही दिया हुआ ज्ञान है, जिसको थोड़ा क्या करते हैं, हर बात बाबा ने इतना स्पष्ट हमें दिया हुआ है, सिर्फ रिवाइज करते हैं। बाकी आज का जो विषय है कि ब्राह्मण जीवन में आवश्यक बल, क्योंकि ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। बाबा ने हमें समय प्रति समय मुरलियों के माध्यम से अनेक ऐसे खजाने दिए हैं कि जिससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हम अपनी स्थिति को पावरफुल कैसे बनाएं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ब्राह्मणों की ये शिकायत रहती है, स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, कोई ऐसी बात आती है, कोई ऐसी घटना घटती है, तो उस समय हलचल अंदर क्रिएट होती है। और ये हलचल का कारण क्या है? सर्वशक्तिमान बाबा से हमें शक्ति तो मिलती है, लेकिन वो शक्ति बल बन जाए हमारा, उसके लिए कौन से बल चाहिए? कोई एक बल की बात नहीं है, हमेशा बाबा कहते एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसे के आधार पर जब हम चलते हैं तो अचल स्थिति बनती है हमारी। लेकिन एक बल एक भरोसा मतलब, एक बल एक भरोसा का मतलब है कि हमारे अंदर सबसे पहले बाप का परिचय प्राप्त हुआ, और जैसे ही निश्चय बुद्धि बने तो एक बल एक भरोसा के आधार पर चलना शुरू करते हैं। तो यही कहे कि सबसे पहला बल जो है वो है निश्चय का बल, क्योंकि माया सबसे पहला यही फाउंडेशन हिलाने का प्रयत्न करती है। ये बल जिसके पास है निश्चय का बल, उसका फाउंडेशन मजबूत होता है। स्थिति हिलने का कारण ही यह है कि कहीं न कहीं फाउंडेशन हमारा कमजोर है। एक बल एक भरोसा के बदले कहीं और बलों के पीछे भी हम जाते हैं, है ना? या दूसरे सहारे को लेने का प्रयत्न करते हैं, तो निश्चय का फाउंडेशन हिलने लगता है। दूसरी बात कि माया का भी सबसे बड़ा कार्य यही है कि निश्चय के फाउंडेशन को हिलाना, क्योंकि एक बार निश्चय का फाउंडेशन हिलता है तो फिर गिरावट आना बहुत स्वाभाविक है। आप सोचेंगे कि बाबा के सिवाय हमारा है ही कौन, तो निश्चय तो है ही ना, तभी तो इतना सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे बाबा ने यही कहा है हम बच्चों को कि बच्चे अंतिम समय जब ये वृक्ष हिलेगा तो कच्चे जो होंगे वो जड़ जाएंगे, और पक्के जो रहेंगे वो पास हो जाएंगे, है ना? तो इसी तरह से माया का काम ही है निश्चय के फाउंडेशन को हिलाना। आप सोच सकते हैं या आप शायद सोच भी ना सको कि माया किस प्रकार निश्चय के फाउंडेशन को हिलाएगी। बाबा की मुरली में हमेशा हमने ये बात सुनी है, हाहाकार के बाद जय जयकार है। अब तक ये समझते थे कि हाहाकार दुनिया में होगा और हमारी जय जयकार हो जाएगी, नहीं, हाहाकार यहां होगा ब्राह्मणों के बीच में, क्योंकि माया जिस तरह से निश्चय का फाउंडेशन हिलाएंगी, अच्छे अच्छे भी गिरेंगे। बाबा की एक मुरली याद आती है जो बहुत पक्के चल रहे हैं, लेकिन जब वो तूफान आएगा तो कई पुराने पुराने को भी उखाड़ ले जाएगा। तो इसीलिए उस समय हाहाकार मचेगा, अरे ये भी गिर गया, ये भी चला गया, बहुत बड़ा झाड़ हिलने वाला है। जिस तरह पहले दो बार झाड़ हिल चुका है, कौन सी बार? पहली बार कब हुआ था झाड़ हिलने का काम? हाँ, बेगरी पार्ट में हुआ था। और दूसरी बार कब हिला था? पहली बार झाड़ हिला था जब बेगरी पार्ट आया, है ना? और बेगरी पार्ट कि भाई भगवान का यज्ञ है और इतनी बेगरी आ गई,
लेकिन यही तो परीक्षा थी कि इस बेगरी पार्ट में भी कितनों को बाबा पर विश्वास है और ब्रह्मा बाबा के भी निश्चय की ये परीक्षा थी। और इसीलिए बाबा को जब किसी ने पूछा, क्योंकि कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, लगातार है ना, एक दो साल भी नहीं, 7-8 साल की बात थी बेगरी पार्ट, कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, जो निश्चय बुद्धि होकर के हम चलते रहे। चार आना भी दाना नहीं होता था, घर में चार आना नहीं होता था और 350 को खिलाना होता था। आपको घर में 5 लोगों को खिलाना हो और 4 आना भी न हो तो टेंशन होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन उस समय बाबा से जब किसी ने पूछा कि बाबा आपको टेंशन नहीं हुआ कि 350 को कैसे खिलाएंगे, 4 आना भी नहीं है, तो बाबा ने इतना सुंदर जवाब दिया कि बच्चे भोग सबसे पहले किसको लगता है? बाबा को भोग लगता है ना। तो जिस दिन बाबा भूखा रहेगा हम भी भूखे रहेंगे। और भक्ति में भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान कभी भूखा रहे, है ना, रुखा सुखा कुछ भी हो। तो बाबा इतना निश्चय बुद्धि कि माना 4 आना भी न हो, और बाबा जानता था कि शिव बाबा बैठा है, उसका यज्ञ, उसके बच्चे, मेरे बच्चे थोड़ी है जो मैं टेंशन लूं, शिव बाबा का यज्ञ है, बाबा को चलाना है, रुद्र यज्ञ है, शिव बाबा को चलाना है। तो ब्रह्मा बाबा को भी निश्चय की परीक्षा देनी पड़ी और ये सबसे पावरफुल बल है। दूसरी बार जाड़ हिला, कई लोग उस समय चले गए कि बस अब यज्ञ खत्म हुआ, इससे तो अच्छा है लौकिक का सहारा पकड़ लो, कम से कम अभी भी वो लोग तो अपनाने के लिए तैयार है, चले गए। और फिर जब वापस धीरे धीरे यज्ञ बढ़ने लगा तो अफसोस करने लगे, अरे हम तो फेल हो गए, है ना। तो इसीलिए दूसरी बार झाड़ तब हिला जब कहा 76 में विनाश होगा, 76 में विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। और फिर 77-78 भी आ गया, कई लोगों ने अरे विनाश होने वाला है, सब कुछ छोड़ दो, नौकरी धंधा सब छोड़ दिया, बस योग करो योग करो, हाँ जितना है उसी से चल जाएगा, और विनाश तो हुआ ही नहीं, क्योंकि लोगों का कैलकुलेशन, बाबा ने कोई मुरली में नहीं कहा था, लेकिन जब बाबा ने कहा था 100 साल का संगम युग, ब्रह्मा की 100 साल की उम्र है, तो 1876 में बाबा का जन्म, तो 1976 में समझा 100 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन वो तो दादा लेखराज का 100 साल पूरा हुआ ना, ब्रह्मा का थोड़ी पूरा हुआ। तो इसीलिए गलत कैलकुलेशन करके 76 में विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा, सब छोड़ दिया, धंधा बंदा सब बंद कर दिया, समर्पित हो जाओ, बच जाएंगे हम। और फिर जब विनाश नहीं हुआ तो लोगों ने जब कहना शुरू किया तो सोचा कि भाई ठीक है, अच्छा है, चलो वापस दुनिया में जाओ, धंधा शुरू करो, कुछ करो, हाँ ये तो हम तो गलत फहमी में आ गए। और कई लोगों ने ज्ञान छोड़ दिया, इतना जबरदस्त झाड़ हिला था, जो सब कुछ समर्पित कर दिया था वो भी चले गए, है ना। तो इस तरह से तीसरी बार भी झाड़ हिलेगा, है ना। और अब की बार जो हिलेगा वो तो फाइनल फैसला करेगा ना, क्योंकि उसी के आधार पर तो नंबर बनना है। तो जब नंबर बनना है तो बहुत बड़े तूफान के रूप में बात आएगी, सारे यज्ञ के ऊपर बात आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बल, एक भरोसा, भगवान है और भगवान हमारा बाप है, ये निश्चय रखते हुए चल लेंगे, समय ऐसा आएगा, बातें ऐसी आएगी जो लोग कहेंगे देखा बहुत ब्रह्मा कुमारी कर रहे थे ना, क्या हुआ देखो, है ना। लेकिन यही तो परीक्षा है निश्चय की। लौकिक वाले, परिवार वाले आपको टोकेंगे, कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका निश्चय नहीं हिले। समय और परिस्थिति को देखते हुए भी बातें ऐसी आएगी तूफान के रूप में, फिर भी एक बल, एक भरोसा। तो निश्चय है इसीलिए चल रहे हैं। लेकिन जब वो बातें आए, जब लौकिक वाले भी आपको कहने लगे ये देखो क्या हो गया ब्रह्मा कुमारियों का, ये जब कहें उस समय आपका निश्चय हिले नहीं, तब कहेंगे सही निश्चय बुद्धि है। सब कुछ अच्छा हो और निश्चय बुद्धि बन करके चलते रहना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पता नहीं चलता है कि हम सचमुच निश्चय बुद्धि है या नहीं है। जिसके पास ये एक बल, एक भरोसा निश्चय का है, वो पास विथ ऑनर हो जाएंगे। जरा भी संशय न आए। सारी दुनिया अक्षौणी सेना एक तरफ हो जाए, लेकिन बाबा ने कहा हजार भुजा वाला आपके साथ है। ये बल, ये भरोसा जिसको है, वो है निश्चय बुद्धि विजयंती। हाहाकार के बाद जय जयकार। जय जयकार किसकी होनी है? निश्चय बुद्धि आत्माओं की जय जयकार होगी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि विजयंती, जय जयकार उनकी होगी। कुछ समय पहले गुलजार दादी के साथ हम बैठे थे, तो दादी के साथ बातें करते करते दादी जी को एक सवाल पूछा हमने कि दादी जी, बाबा कहते हैं समय हमारे लिए रुका है, क्योंकि हम संपूर्ण नहीं बने इसीलिए समय अभी नहीं आया है, समय हमारे लिए रुका हुआ है। और दूसरी ओर जब हम ब्राह्मणों को देखते हैं, तो जब बाबा के समय में आप लोग थे, तो आप लोग का जो स्थिति थी, जो सतोप्रदान स्टेज थी, और आज जब हम देखते हैं ब्राह्मणों को, तो सतोप्रधानता बहुत दूर नजर आती है। रजोप्रधान तक भी शायद नहीं होंगे, और समय हमारे लिए रुका है। और सतोप्रधानता की ओर जाने के बजाय कईयों के संस्कार देखते हैं तो ऐसा लगता है तमोप्रधानता की ओर जा रहे हैं, तो विनाश होगा ही नहीं। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा देखो हर धर्म को चार अवस्था से गुजरना पड़ता है। देवी देवताओं के धर्म की भी, आदि सनातन देवी देवता धर्म की भी चौथी स्टेज है, तो हर धर्म की चौथी स्टेज पहुंच गई है। ब्राह्मण भी धर्म है, ब्राह्मण भी धर्म है। बाबा के समय वो सतोप्रधानता थी, अब धीरे धीरे तमोप्रधानता चौथी स्टेज में आएगा ये धर्म भी। अभी तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ देखेंगे, दादी ने यहां तक कहा, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ देखेंगे आने वाले समय में। जब बहुत कुछ देखेंगे, उस समय दो प्रकार के बच्चे ऐसे हो जाएंगे, जो निश्चय बुद्धि होंगे उसके अंदर बेहद का वैराग आएगा। ब्राह्मणों का कर्म देखते हुए, यहां देखते हुए, और दूसरे प्रकार के बच्चे होंगे उसका निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा। वो सोचेगा इसे तो दुनिया अच्छी, दुनिया में भी ऐसा नहीं होता है, तो दुनिया अच्छी तो वो दुनिया में जाएंगे। और जो यहां होंगे उनके अंदर एक सब देखने के बाद एक वैराग्य उत्पन्न होगा, और वैराग्य के बाद जो वो तपस्या आरंभ करेंगे, उनकी वो बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली तपस्या
वो समय को नजदीक लाएगी, वो समय को ले आएंगी, वो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेंगी। इसीलिए दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ब्राह्मण भी धर्म है, उसको भी चार अवस्था से गुजरना ही है और चौथी स्टेज आएगी, बहुत कुछ देखेंगे। अब तक तो कुछ नहीं है लेकिन आगे समय, लेकिन उस समय निश्चय बुद्धि बन करके चलना, यह है निश्चय का बल। और जिसके पास ये निश्चय का बल है उसकी जय जयकार, जो निश्चय बुद्धि नहीं उसकी जय जयकार थोड़ी हो सकती है, जय जयकार उसकी नहीं होगी। जय जयकार उसकी होंगी जो निश्चय बुद्धि बन करके कुछ न देखे, साइड सीनों को न देख करके, बस एक बल एक भरोसा, एक बाबा और एक मैं। हमने बाबा को देख करके इस ज्ञान मार्ग में कदम बढ़ाए हैं, किसी इंसान को देख करके नहीं। ये है एक बल एक भरोसा। आने वाले समय के लिए ये बल बहुत जरूरी है। दूसरा बल है पवित्रता का बल, सत्यता का बल। सत्य बाबा है, सत्य ज्ञान है, और उसकी जो हमें पहली आज्ञा मिली है, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्रता का बल हमें सुरक्षित रखेगा। हर रीति से जो समस्याएं आएंगी, जो बातें आएंगी, पवित्रता का बल ही हमें हर रीति से सुरक्षित रखेगा। अगर पवित्रता में परसेंटेज है, बाबा की मुरलियां आजकल जो चल रही है, साकार मुरलियों की बात कर रही हूं, साकार मुरलियां जो चल रही है हर उसमें, करीबन मैं समझती हूँ 2 सप्ताह से ऊपर हो गया, लेकिन ऐसा लगता है बाबा की हर मुरली साकार मुरली धर्मराज का स्वरूप है, अटेंशन खिंचवा रहा है, और उसमें भी पवित्रता के फाउंडेशन के ऊपर बाबा बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। लगातार 2 हफ्ते से ऊपर की मुरलियां हो गई, तो इसीलिए पवित्रता का बल जिसके पास है, परसेंटेज में नहीं लेकिन संपूर्ण पवित्रता को अब समय अनुसार धारण करना है। और अगर ये पवित्रता के फाउंडेशन की कमजोरी है, ये भी फाउंडेशन है, जैसे निश्चय का फाउंडेशन है, ऐसे पवित्रता का भी बहुत पावरफुल फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन भी बहुत जरूरी है। पवित्रता का बल, सत्यता का बल, यानी भगवान के साथ वफादार, ईमानदार, फरमानवरदार, ये है पवित्रता का बल, है ना? ये बल भी बहुत जरूरी है। अगर ये बल नहीं होंगे तो माया क्या करेगी, उड़ा ले जाएगी। दुनिया के अंदर भी हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि जो सन्यासियों के पास ये बल नहीं है, चारों ओर क्या हो रहा है, उनके बदनामी होती जा रही है, है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आने वाले समय में अगर आपको सुरक्षित रहना है तो पवित्रता का बल बहुत आवश्यक है, संपूर्ण पवित्रता का बल। फिर तीसरा बल है श्रीमत का बल, श्रीमत का बल या ज्ञान का बल। बाबा की रोज मुरली सुनते हैं, उसमें ज्ञान की भी बातें हैं और उसमें श्रीमत भी मिलती है। जिसके पास ये श्रीमत का बल है वो हर रीति से हर समस्या को पार करने की समर्थी रखता है, क्योंकि श्रीमत ही बाबा का हाथ है। तो बाबा के हाथ में अपना हाथ देना माना सेफ रहना। वो कहानी याद आती है
कि एक बार एक बाप अपनी बच्ची को लेकर कहीं जा रहा था, छोटी सी बच्ची थी, तो जा रहा था मेले के अंदर, अचानक एक ऐसा जोर का तूफान आया तो बाप ने बच्ची को कहा मेरी अंगुली पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले। बच्ची ने कहा नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पिता ने कहा बात तो एक ही है, तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तेरा हाथ पकड़ूं। बच्ची ने कहा नहीं, मैं अगर आपका हाथ पकड़ूंगी तो छूटने की संभावना है, क्योंकि मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं तो छूट सकता है, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कैसा भी है आप कस के पकड़ के रखेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो इसी तरह बाबा के श्रीमत रूपी हाथ में अपना हाथ देना तो बाबा कभी छोड़ेगा नहीं। अगर हमने पकड़ा है बाबा को तो छूटने की मार्जिन रहेगी। इसीलिए बाबा के हाथ में अपना हाथ दे दो तो छूट नहीं सकता है, भगवान कभी छोड़ेगा नहीं। बड़े से बड़ा तूफान आ जाएगा तो भी भगवान नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए ज्ञान का बल कहो या श्रीमत का बल, ये हमें अंदर से सशक्त करता है, पावरफुल बनाता है। तो ये है तीसरा बल। फिर चौथा है योग का बल या तपस्या का बल। तपस्या का बल भी बहुत पावर वाला है, योग तपस्या का बल। इसीलिए बाबा बार बार हर मुरली के अंदर ये स्ट्रेस करके कहता है कि बच्चे निरंतर याद करने का अभ्यास करो। जितनी याद को निरंतर बनाएंगे, अगर टूटक टूटक होगी याद तो उसका वो बल नहीं बनेगा। जितनी निरंतर होगी उतना वो बल बनेगा अंदर में। अभी बैठे, टूट गई याद, फिर जोड़ा, फिर टूटा, फिर जोड़ा, फिर टूटा, वो कमजोर याद है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तपस्या ऐसी हो, योग बट्टी हम क्यों रखते हैं, कि जिसके कारण वैसे हमारे दिनचर्या के अंदर याद किया टूटा, फिर दुनिया में चली गई बुद्धि, फिर जोड़ा, फिर टूटा चला गया, है ना। बाबा भी जानता है, इसलिए बाबा ये तपस्या रखते हैं बीच बीच में, बट्टियों का प्रोग्राम रहता है ताकि उस समय और कोई कारोबार नहीं तो बुद्धि को एक अभ्यास में हम डाल सकते हैं जिससे हमारी याद निरंतर हो। क्योंकि यही अभ्यास हमें कर्म में काम आएगा, प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर काम आएगा, क्योंकि ये बल बहुत पावरफुल बल है। क्योंकि इसी में हमें बाबा की सकाश प्राप्त होती है। अगर याद टूटती रहेगी घड़ी घड़ी, उसमें सकाश नहीं महसूस होगी। तो इसलिए जितना ये निरंतर होगा तो सकाश का अनुभव होगा, और सकाश के अनुभव से जैसे बाबा के वरदानों से पल रहे हैं, चल रहे हैं, ये महसूस होगा, है ना। तो इसीलिए चौथा बल है तपस्या का बल। पांचवा बल है, आज की मुरली सुनी है, पिछले संडे की मुरली भी सुनी, कंटिन्यूएशन में है ना, त्याग। तो त्याग का भी बल है, त्याग का भी बल है। और इसीलिए बाबा ने सर्वप्रथम त्याग कौन सा बताया, देहभान का त्याग। देहभान का त्याग, मैं और मेरेपन का त्याग, ये बेस है। और जब हमने ये त्याग को अपनाया जीवन के अंदर, दुनिया में लोग त्याग करते चीजों का, वस्तुओं का, है ना, स्थूल में त्याग करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें जो सूक्ष्म त्याग की परिभाषा बताई, और वो सूक्ष्म त्याग की परिभाषा है सबसे पहला मैं और मेरेपन का त्याग, देह और देह के संबंधों में जो बातें आती है उसका त्याग करना है ना, जहां उस सूक्ष्म अहम को भी हमने त्याग दिया, ये त्याग बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। इसीलिए चीज वस्तु का नहीं, लेकिन चीज वस्तु साधन है, यूज करो, लेकिन उसमें आसक्ति न हो, मैं और मेरेपन की भावना न हो। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छा पिछली बार भी ये बात कही, तुम मेहमान हो, मेहमान समझ करके चलो, तभी तुम महान बनेंगे। हर चीज को भी कैसे यूज करना है ना, मेहमान समझ करके यूज करना है। हम आए हैं, यू मेहमान है, तो मेहमान का लगाव नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है। तो त्याग की एक एक मुरली, जो सात मुरलियां चलने वाली है हर संडे को, है ना, बाबा ने सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाया है। और ये त्याग का बल बहुत बड़ा बल है, अंदर से आत्मा को इतनी पावर प्रदान करता है, क्योंकि जहां ये सूक्ष्म अभिमान का त्याग करते हैं, तो ये अभिमान ही कई प्रकार की बीमारियों को साथ में खत्म करता है। नहीं तो अगर ये सूक्ष्म त्याग नहीं कर पाए, तो बाबा जैसे कहते कई प्रकार की कमजोरियों को वो जीवन के अंदर ले आएगा, जो अंतिम पेपर को पास करने में असमर्थ बना देगा। इसीलिए त्याग का बल बहुत बड़ा बल है ना, सूक्ष्म त्याग का बल। उसके बाद कितना हो गया, पांच हो गया। फिर छठा बल है धारणाओं का बल, धारणाओं का बल। बाबा ने जो हमें नियम मर्यादाएं धारणाएं दी है, इन धारणाओं में भी बहुत बल है। प्रैक्टिकल अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, दुनिया में लोग खाली उपवास करते हैं, उपवास करते हैं, हफ्ते में एक दिन का उपवास होता है, या नवरात्रि होती है तो नौ दिन का उपवास कर लेते हैं, या जैनी लोग पर्युषण में 40 दिन का उपवास कर लेते हैं। और उस उपवास के अंदर भी एक धारणा, एक बात में संयम लिया, तो भी उसके बाद उनके अंदर बहुत बल, तेज निखर आता है उनके ऊपर, है ना। तो हमें तो कितनी धारणाएं बाबा ने दी है, कितने उपवास, कितने उपवास भगवान ने हमें दिए हैं, किन किन बातों के उपवास दिए हैं, तो कितना बल हो जाएगा सोचो। ये धारणाओं का बल भी कोई कम थोड़ी है, तभी तो भगवान हमेशा टाइटल देते हैं जो इन धारणाओं को फॉलो करने वाले हैं सच्चे वैष्णव, टाइटल मिल गया, विष्णुवंशी, है ना, विष्णु के कुल में आने वाले बन जाएंगे, तो विष्णुवंशी बन जाते हैं, सच्चे वैष्णव बन जाते। और दुनिया में भी जो सच्चे वैष्णव होते हैं उनके पास ताकत होती है ना? तो बाबा कहते तुम बच्चे भी सच्चे वैष्णव, तो धारणाओं की जो ताकत है, धारणाओं का जो बल है, वो कोई कम नहीं है, बहुत पावरफुल बल है। ऐसी पावर अंदर से क्रिएट करेगा कि जिससे कोई भी परीक्षा को पार करना हो असंभव नहीं लगेगी, संभव हो जाएगा, क्योंकि वो संकल्प शक्ति को बल देता है। ये धारणाएं हमारी जो है, ज्ञान का बल जो है, श्रीमत का बल जो है, या ये तपस्या का बल, धारणाओं का, ये डायरेक्ट आत्मा को ताकत दे रहा है ना, डायरेक्ट आत्मा को ताकत दे रहा है। कुछ समय पहले है ना, एक जैन महाराज से बात हो रही थी, तो ऐसे ही निकला कि भाई जैनी लोग चलते रहते हैं, है ना, चलते रहते हैं। तो हमने कहा कि अगर ये चलने के बजाय गाड़ी को यूज करे और जाकर के जहां उनका आगे का मुकाम है वहां पहुंच जाए और वहां लोगों को ज्ञान दे, तो बेनिफिट पहुंचाएंगे लोगों को, चलते रहने में कितनी एनर्जी वेस्ट जा रही है इनकी, तो ये चलने का क्यों मनाया है। महाराज ने बहुत अच्छी बात सुनाई है ना, एक माना जिसको का एक साइंस बताया कि ये चलने का क्यों रखा हुआ है। हमने कहा त्याग करे तो त्याग दूसरी चीजों का, ये चीजों का त्याग क्यों करते हैं। कहा ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। क्या विज्ञान है? तो कहा कि जब ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हैं तो आत्मा में बहुत बल आता है ना, इतना पावर आता है, और अगर उस पावर को यूज नहीं किया जाए तो ये जो ब्रह्मचर्य व्रत का बल है सीधा यहां अटैक करता है, मानसिक असंतुलन क्रिएट हो जाएगा। और उस जमाने में इतना बोलने का अभ्यास नहीं था, प्रवचन देने का अभ्यास नहीं था, ये प्रवचन देने वाले बहुत थोड़े होते थे, और अगर इनको, इन लोगों को जो साधु बनते हैं, साध्वी बनते हैं, और अगर इनके इस ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति को यूटिलाइज नहीं करे तो मानसिक असंतुलन क्रिएट कर देंगे, तो कहां यूज करे। इसलिए चलते रहो, तो चलने में कम से कम वो यूज होती रहे, वो ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत यूज हो। तो इसीलिए जो है ये चलने का सिस्टम बनाया। बाबा ने भी ये ब्रह्मचर्य व्रत हमें दिया है, लेकिन उसके साथ एक खिलौना भी दे दिया। कौन सा? सेवा। सेवा करो, तन मन धन समय स्वास्थ्य शक्ति मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करते चलो। तो सेवा में बिजी रहो, अंत तक सेवा करनी है। बाबा ने इसलिए कहा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस चलता रहे, और बैलेंस से चलना है। सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति अगर यहां पहुंच गई ना, विकृति क्रिएट कर सकती है, विकृति क्रिएट कर सकती है, और इतने विकृत हो सकता है इंसान जो समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए ये जैन लोग जो थे, काफी उनके अंदर साइंस शास्त्र के अंदर जो है, तो इसीलिए वो साइंस क्या समझाएं लोगों को। उस जमाने में लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो कहा चलते रहो ताकि वो शक्ति यूज होती रहे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इस तरह का कष्ट नहीं दिया। वहां कष्ट दिया जाता, यहां कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन सेवा में व्यस्त रहो, बिजी रहो। इसीलिए बाबा कहते सदा बिजी रहो, है ना। तो इसीलिए छठा बल है सेवा का बल, और सेवा द्वारा दुआओं का बल, बहुत पावरफुल बल है ये भी। सेवा जब हम करते हैं तो ये सेवा जितना दूसरी आत्मा को सुख मिला हमारी सेवा द्वारा, उसकी उन्नति हुई, उसका पुण्य तो प्राप्त होता है, लेकिन अंदर से, आत्मा के अंदर से दुआएं निकलती है, और ये दुआओं का बल, सेवा द्वारा दुआओं का बल बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम पेपर को पार करने के लिए दुआएं ही काम आएंगी। आदरणीय दादी जानकी हमेशा ये बात कहती है कि ये सीजन है दुआएं देने की और दुआएं लेने की। दूसरों को भी देते चलो, जितना अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं हम देते जाएंगे और दुआएं लेते जाएंगे, ऐसा अच्छा हम सेवा का कार्य करें जो अनेकों की दुआएं प्राप्त कर सके, किसी को सुख दे, किसी को शांति मिले। अंजलि लेने के लिए लोग आएंगे अंत में, लेकिन जब उनको वो मिल जाता है तो अंदर से दुआएं मिलती है। ये दुआओं का बल क्या काम करता है, बड़े से बड़े पहाड़ में, पहाड़ जैसी परिस्थिति में, जैसे मक्खन से बाल या पानी पर लकीर ठहरती नहीं है, इसी तरह वो चीजें हमारी मानसिकता को इफेक्ट में नहीं लाएगी। इसलिए दुआओं का बल चाहिए, बहुत जरूरी है ना। तो कितने बल हुए? हाँ, सात बल हो गए, सात बल हुए ना। देखो, सबसे पहला बताया निश्चय का बल, पवित्रता का बल, पवित्रता कहो, सत्यता कहो, है ना। तीसरा है श्रीमत का बल, चौथा है योग तपस्या का बल, पांचवा है धारणा का बल, छठा है त्याग का बल, त्याग का बल, और सातवां है सेवा द्वारा दुआओं का बल, और आठवां है श्रेष्ठ कर्मों का बल। श्रेष्ठ कर्मों का भी बहुत बल है, इसलिए बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं, बच्चे श्रेष्ठ कर्म करते चलो। जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारे कर्म ही हमें अंदर से ताकत देंगे। कुछ समय पहले, मैं कुछ सालों पहले की बात है, मैं समझती हूँ 95 की बात है ये, और 95 की बात में मैं कहीं जा रही थी ट्रेन में, तो मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी। तो वो बहन ने मुझे देखा तो मुझे कहने लगी, बहन जी आप टीवी पर आते हो, है ना। तो मैंने कहा आती हूँ। मेरे से बात करने लगी, बात करते करते उसने मुझे कहा, बहन जी मैं है ना ज्योतिष हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उसने मुझे कहा कि बहन जी अगर आप माइंड ना करो मैं आपका हाथ देख सकती हूँ, है ना। तो हमारी तो बाबा ने लकीरें खींची हुई है श्रेष्ठ कर्म के आधार पर। तो मैंने कहा देख लो क्या बड़ी बात है, तो देख लो कहा। तो देखने लगी। उसके बाद उसने मेरे को कहा, बहन जी मैं अगर आपको एक बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा नहीं, बुरा क्यों मानेंगे। तो उसने मेरे को कहा, आपके जीवन में जो है ना काल सर्प योग है, काल सर्प योग आ रहा है। मैंने कहा ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं क्या होता है ये, है ना। तो मैंने कहा ये क्या होता है, तो मुझे उसने एक्सप्लेन किया कि जैसे सर्प होता है ना, सर्प जब डसता है तो व्यक्ति खत्म हो जाता है, तो आपके जीवन में भी काल सर्प योग आ रहा है और ये आपको डसेगा। मैंने कहा अच्छा फिर क्या होगा। तो कहा आप जो है ना, मैंने कहा खत्म हो जाएंगे, वो भी डर नहीं है हमें तो, है ना। बाबा ने कहा है अगर खत्म होंगे तो भी अच्छे घर में ही जन्म लेना है। तो कहा नहीं खत्म नहीं होंगे आप, लेकिन ये काल सर्प योग जो है आपको ये संस्था से उखाड़ जरूर देगा और आप दुनिया में चली जाएंगी, ये संस्था में नहीं रहेंगी। ये ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेगा जो आप ये संस्था छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी और आप चली जाएगी, आप यहां नहीं रहेगी। मेरे को हंसी आ गई। तो उसने मुझे कहा, बहन जी मेरी भविष्यवाणी आज दिन तक गलत नहीं हुई है। मैंने कहा हो सकता है आपकी भविष्यवाणी सही हो। मैंने कहा आप जो कुछ भी कह रही है वो सही है, बाकी एक बात जो कही आपने संस्था छोड़ने की बात, ये तो मना, ये मुमकिन नहीं है। बोले नहीं, आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएंगी जहां मजबूर हो जाएंगे छोड़ने के लिए। मैंने कहा ये सवाल ही नहीं उठता है। बोला क्यों। मैंने कहा क्योंकि यहां तक आपका ज्ञान है, आपका ज्ञान यहां तक है, हमारा ज्ञान थोड़ा आगे चलता है। मैंने कहा आगे ये है कि हमें जो भगवान ने श्रेष्ठ कर्म सिखाए हैं, ये श्रेष्ठ कर्म जो हमने किए हैं ना, उस कर्म पर मुझे भरोसा है। मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं और मेरे साथ जो अनेकों की दुआएं हैं, ये दुआओं की शक्ति मुझे हर हाल में बचाएगी। मैंने कहा इसका मुझे विश्वास है, इसलिए आपकी बात सही होगी, आएगी परिस्थिति ये भी मैं मानती हूं, लेकिन उखड़ने के लिए अगर उखड़ने वाली बात भी आ जाए तो भी मेरे कर्म मुझे बचाएंगे, इसका मुझे विश्वास है, मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। तो कहा कि ठीक है बहन जी एक काम करो, उसने मेरा अपना कार्ड निकाला और कहा ये मेरा कार्ड है, आप रखिए, और अगर 6 महीने के अंदर आपने संस्था नहीं छोड़ी तो आप मुझे फोन करना कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई है ना। मैंने कहा फोन करने की तो बात ही नहीं, आप टीवी पर देखना बंद करेंगी माना मैं चली गई हूँ, अगर टीवी पर आती रही तो माना मैं जिंदा हूँ ये संस्था के अंदर, बस स्पष्ट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, वहां से तो अलग हो गए हम। वो उस बात को उसने कहा था 6 महीने में आप उखड़ जाएंगी, परिस्थिति ऐसी आएंगी, मजबूर हो जाएंगे, बात सही थी उसकी। बहुत बड़ी परीक्षा आई, बहुत बड़ी परीक्षा आई, इतनी बड़ी परीक्षा आई जो मेरी जगह पर कोई भी होता था सचमुच उखड़ जाता था, सचमुच उखड़ जाता था। लेकिन जैसे मैंने उसको ये भी कहा था कि मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है, मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं और जो दुआएं मेरे साथ है लोगों की वो दुआएं मुझे बचाएंगी, सचमुच में जैसे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, इतनी बड़ी बात आई कि कोई भी व्यक्ति बस गिरा तो चला गया ऐसी हालत हो जाए, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा के बाद भी जो श्रेष्ठ कर्म का बल कहो, परमात्मा की शक्ति का बल कहो, योग तपस्या का बल कहो, उसने जब से ये बात किया तो मैंने फिर योग तपस्या अपनी बढ़ा दी है ना। योग तपस्या ऐसी करी मैंने कि 8 घंटे का चार्ट बनाया मैंने अपना, 8 घंटे का चार्ट, और वो भी बाबा जैसे कहते हैं नाइट भट्टी करो। तो मैंने खास मोहिनी दीदी से बात किया कि मैं है ना क्वारंटाइन में बैठना चाहती हूँ, 8 दिन पूरा जो है मैं नाइट भट्टी करना चाहती हूँ, तो मैं बाबा के रूम में कर सकती हूँ यहाँ पांडव भवन में। तो कहा नहीं, बाबा के रूम में नहीं बैठना, तुम छोटे हॉल के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वहाँ छोटे हॉल में बैठ सकती, वहाँ कोई नहीं आएगा, नहीं तो कोई देखता है तो 10 संकल्प चलाएगा क्यों ये बैठती है क्या है, तो 10 संकल्प तू वहाँ बैठना। मैंने कहा ठीक है। तो दिन में मैं आराम कर लेती थी और मैंने लक्ष्य रखा था 8 घंटे का योग करना है, योग तपस्या अपनी बढ़ा देनी है और 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक योग करना है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, माया जब उखाड़ना चाहती है ना तो वो ऐसे विघ्न क्रिएट करती है कि योग तपस्या भी करने नहीं देती। 2 दिन तो बहुत अच्छी मेरी तपस्या रही, 2 दिन के बाद किसी ने दादी जी को कान में सुना दिया है ना, कमरे में 3-4 लोग तो साथ में रहते ही है, अकेला तो कमरा किसी का होता नहीं, तो किसी ने दादी जी को सुना दिया, दादी ये रात को कमरे में आती नहीं है। तो दादी ने बुलाया मेरे को, इधर आओ, कहाँ जाती है रात को तुम। फिर दादी को मैंने सुनाया, दादी मैं योग तपस्या कर रही हूँ क्वारंटाइन में, बाबा कहते हैं ना तो क्वारंटाइन में मैं बैठने का अनुभव करना चाहती हूँ कि क्वारंटाइन में बैठने का अनुभव क्या होता है। अच्छा, किसी ने यह भी सुना दिया था कि दादी ये इस तरह से अगर रात भर नहीं आई और रात भर अगर घूमती रही या जागती रहेगी तो ये मेंटल हो जाएगी। तो मुझे कहा कि पागल हो जाना है तेरे को है ना। तो मैंने कहा नहीं दादी, मैं दिन में आराम कर लेती हूँ। तो दादी ने कहा नहीं, रात में नहीं करो, तुमको अगर करना है 2:30 बजे के बाद करो उठ करके। तो वो 2 दिन मेरा बहुत अच्छा चला, 2 दिन के बाद मेरा वो रात का जो है दादी जी की आज्ञा को कोई डिसोबे तो नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक का योग शुरू किया। 8 घंटा दिन में कंप्लीट कर लेती थी 8 घंटे का योग का चार्ट। कहने का भावार्थ, श्रेष्ठ कर्म का बल ऐसा है जो उस समय अगर मदद किया मुझे तो एक तो योग तपस्या का बल और श्रेष्ठ कर्मों का बल, बड़े से बड़ी परीक्षा में भी दुआओं का बल उखड़ने से बचा लिया। 95 की ये बात काल सर्प योग वाले आज भी अगर जिंदा है, और उसके बाद उस काल सर्प योग के बाद उसने भी कहा था कि अगर इसमें आप बच गए तो उसके बाद आपकी बहुत उन्नति है, आप बहुत उन्नत करेगी है ना। तो मैंने देखा कि श्रेष्ठ कर्मों का बल इसको कहा जाता है और उसके बाद जो उन्नति हुई बहुत जबरदस्त उन्नति। ये 8 बल जिसके पास है उसका कोई बाल भी बांका करेगा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है।
इसलिए बाबा जैसे कई बार कहते हैं कि अष्ट रत्न में आने के लिए अष्ट शक्तियां चाहिए संपूर्ण रूप में, ऐसे ये अष्ट बल भी बहुत जरूरी है जो हमारे जीवन में बहुत चमत्कारिक अनुभव हमें कराता है। और इसीलिए ब्राह्मण जीवन में ये आठ बल इकट्ठा करना ये अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। ये और कहीं से प्राप्त नहीं करने की बात है, खुद के जीवन के अंदर ये आठ बातों को ले आइए और देखो कितना पावर आपके अंदर आ जाती, कितना बल आ जाता है और हर परीक्षा को पार करने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो ये भट्टी है ही किस लिए? आठों बलों को जमा करने के लिए।
अब हमें और क्या चाहिए, हाथ में ले लिए हाथ में, अब हमें और क्या चाहिए।
ज्यों इमारत की नींव बनाई जाती है ना, बहुत गहरी मजबूत, और उसके चारों तरफ पिलर्स खड़े किए जाते हैं। आजकल तो पिलर्स पे बनता है ना, ताकि भूकंप रोधी इमारत खड़ी हो। आजकल ये भी ध्यान रखते हैं, भूकंप रोधी खड़ी हो। ऐसे ही उषा दीदी ने हम सबके जीवन की इमारत को भट्टी की शुरुआत में ही पक्का बना दिया है। हम विश्वास दिलाते हैं कि अब हमारा ये ब्राह्मण जीवन सच्चा पक्का जीवन सदा सदा का रहेगा ना। तो ओम शांति।